Sammelan Center at Temple Square.
Salt Lake City के Temple Square स्थित सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के यीशु संतों का यीशु मसीह के गिरजों का 186वां अर्थवार्षिक महासम्मेलन है। इसके वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए हैं। इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा होगा। गिरजे के मार्गदर्शियों से सलाह और निर्देश प्राप्त करने के लिए विश्व के सभी स्थानों के गिरजे के सदस्य और पदाधिकारियों में से हुए हैं। ये प्रसारण बॉनविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग इस सत्र का संचालन करेंगे।
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session of the 186th semi-annual general conference.
और बहनों, अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे घर के 186वें अर्धवार्षिक महासम्मेलन में आपका स्वागत करते हैं और करम जोशी से उन सदस्यों और मित्रों का अभिनंदन करते हैं जो संसार भर में कहीं भी इस रूप में भाग ले रहे हैं। अध्यक्ष थॉमस मॉनसन जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं ने मुझे इस सत्र का संचालन करने को कहा है। इस सत्र का संगीत मॉर्मन गायक मंडली मेल मिलबर्ग और रायन वर्फी के निर्देशन द्वारा एंड्रूज अनवर्थ और क्ले कंसेशन के ऑर्गन पर दिया जाएगा। गायक मंडली ने इस सत्र का आरंभ में स्वीट इज द वर्ड गाया और अब इस सॉन्ग्स ऑफ प्रेज गाकर करेंगे। इसके बाद आरंभिक प्रार्थना बहन जॉय डी जोन्स द्वारा दी जाएगी जिन्हें पिछले अप्रैल में प्राथमिक जनरल अध्यक्षता के रूप में समर्थन दिया गया था।
Heavenly Father, we thank
you. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके धन्यवाद देते हैं आशीषों के लिए, सारी दुनिया के लिए और जनरल कॉन्फ्रेंस जो दिखाई जाए सारी दुनिया में। हम आपके धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र और उसकी अटोनिंग सेक्रीफाइस के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रॉफिट और अपोसल्स के लिए, और उनके प्रे करते हैं कि उनको ब्लेस कीजिए और उनको हमारे प्यार से, हम उनकी उनको ट्रस्ट करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनके जो यहाँ पे उपस्थित हैं और आपकी पवित्र आत्मा को महसूस करें और हम भी उसको महसूस कर सकें और हम सीख सकें पवित्र आत्मा के अंतर्गत। हम अपना प्रभाव आपके नाम पे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।
We will now be pleased to hear from President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency. After his remarks, the choir will sing, "We thank thee, O God, for a prophet."
अब हम अध्यक्ष डॉक्टर उखटोफ को द्वितीय सलाहकार को सुनेंगे, उनके पश्चात गायक मंडली "We thank thee, O God, for a father" गाएगी, प्रॉफिट गाएगी, उसके पश्चात 12 की परिषद के रॉबर्ट डी हिल्स बोलेंगे, उसके पश्चात बहन कैरल एफ मैकॉन्की यूनिटी जनरल अध्यक्षता के पहला सलाहकार बोलेगी।
How blessed we are to assemble again in this.
हम प्रकाश और सच के कुछ ऐसे विश्व में प्रेरक धन से घिरे हुए हैं। हम कितने आशीषित हैं कि दुनिया भर में होने वाले सम्मेलन में अपने प्रिय भविष्यवक्ता और अध्यक्ष थॉमस मानसन के मार्गदर्शन और निर्देशन के अंतर्गत एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। अध्यक्ष, हम आपसे प्रेम और समर्थन करते हैं। मेरा व्यावसायिक जीवन के दौरान एक पायलट के रूप में मैं कंप्यूटर प्रणाली के सुषमता और स्थिरता पर पूर्णता से निर्भर था, परंतु कभी कभार अपने स्वयं के व्यक्तिगत कंप्यूटर पर काम करना पड़ता था। मेरे ऑफिस कार्य के मैं एक प्रबंधक के रूप में करता था, सलाहकार और सहयोगी विनम्रता से लक्ष्य का काम करने में जो मेरी मदद करते थे। यह सब 1994 में बदला गया जब मुझे जनरल अधिकारी के रूप में बुलाया गया था। मेरी बुलाहट बहुत सारी सेवा करने के अद्भुत मौके लाई थी, परंतु इस में गिरजे के ऑफिस के बड़े बड़े काम भी शामिल मेरे संभवतः समझ के परे थे। मेरे कोष में मेरा काम करने का प्रमुख सर्वश्रेष्ठ औजार एक व्यक्तिगत कंप्यूटर था। मेरे जीवन में पहली बार मुझे एक अजनबी रहस्यमय समझ से परे संसार के संगम करना पड़ा था। शुरू से कंप्यूटर और मेरे मित्रता की सूची में नहीं थे। तकनीक योग्य लोगों ने मुझे कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करते हैं सिखाने की कोशिश की। वे वास्तव में मेरे पीछे खड़े रहते और मेरे कंधे से ऊपर पहुंचकर उनकी उंगलियां शीघ्रता से कीबोर्ड पर लय से थरथराती थी। देखो, वह गर्व से कहते थे, इस तरह से आपको करना है। मैं नहीं देखता था, वह एक कठिन बदलाव था। मेरे सीखने की क्षमता ईंट की दीवार के कुछ समान थी। उन्हें दोहराना धैर्य, आशा और विश्वास में कमी नहीं। मेरी पत्नी का आश्वासन और कई लीटर सोडा, जो अब भी बिना नाम का है, ने बहुत सा समय लिया था। अब 22 वर्षों बाद मैं कंप्यूटर तकनीकी से घिरा हुआ हूँ। मेरे पास एक ईमेल, एक ट्विटर खाता और एक फेसबुक पेज है। मैंने एक स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और एक डिजिटल कैमरा लिया है, और जबकि मेरी तकनीकी क्षमता उन 7 वर्षीय से स्तर से नापी ना जाए, एक स्तर और 80 वर्षीय के लिए मैं ठीक ठाक करता हूँ, परंतु मुझे कुछ रोमांचक सी बात पर ध्यान दिया था। जितना अधिक निपुणता से मैं तकनीक अपनाता, उतना अधिक मैं उसका फायदा उठाता था। मानव इतिहास में एक बड़ा सा भाग संचार की रफ्तार तीव्र गति से हुई है। संदेश भेजने और जवाब पाने में कई दिन या यहाँ तक महीने लग जाते थे। आजकल हमारे संदेश हजारों मील की यात्रा कर या हजारों मीटर समुद्र के अंदर संसार के दूसरे छोर तक किसी के पास पहुंचते हैं, और यदि कुछ क्षण की देरी हो जाए हम विचलित और परेशान होने लगते हैं। यह मानव प्रकृति में दिखाता है, जैसे हम किसी चीज के साथ अधिक परिचित होते हैं, यहाँ तक कुछ चमत्कारी और धकधायक हैं, हम अपनी धाक की क्षमता को खो देते हैं और उसको सुधारता से लेते हैं। क्या हम आत्मिक सच्चाई का फायदा उठाते हैं? अपनी आधुनिक तकनीकियों और सुविधा का फायदा उठाना एक अपेक्षाकृत छोटी सी बात हो सकती है, परंतु दुखद हम कभी कभार अनंत गुणों और यीशु मसीह के सुसमाचारों के आत्मिक बढ़ाव सिद्धांत को समानता से लेते हैं। इस गिरजे में हमें इतना दिया गया है, हम प्रकाश और सच्चाई के इस तरह के एक विस्मय प्रेरणादायक धन से घिरे हुए थे कि मैं अचंभित हूँ कि क्या हम सच में उसकी सराहना करते हैं जो हमारे पास है। सोचने उस पहले के शिष्यों के बारे में जो उधारकर्ता के साथ उसकी धरती की सेवकाई में चले और बात करते थे, कल्पना करने धन्यवादित और श्रद्धा जो कि उनके हृदयों और मनों में भर गई थी, जब उन्होंने उसे कब्र से पुनर्जीवित होते देखा, जब उन्होंने उसके जख्मी हाथों का स्पर्श कर महसूस किया था, फिर कभी भी उनका जीवन सामान्य नहीं रहा होगा। इस युग में पहले के संतों के बारे में विचारिए जिन्होंने जोसेफ स्मिथ को जाना और उसे पुनर्स्थापित सुसमाचार का प्रचार करते सुना था। कल्पना कीजिए, उन्होंने जहां जब पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का पर्दे को हटता हुआ और ऊपर सैटेलाइट घर से संसार पर छनकार आता हुआ प्रकाश और ज्ञान को देखकर कैसा महसूस किया होगा। अधिकांश विचार करें, आप कैसा महसूस करते जब आपने पहली बार विश्वास किया और समझा कि आप वास्तव में परमेश्वर के बच्चे हैं, कि यीशु मसीह इच्छा पूर्वक हमारे पापों के लिए पीड़ित हुआ ताकि हम फिर से साफ हो सके, कि पौरोहित्य समर्थन वास्तविक है और आपको आपके प्रियजनों के साथ इस मजबूती के बंध सके समय और सारी अनंत के लिए, कि आज यह पृथ्वी पर जीवित भविष्यवक्ता है। इन सब पर विचारिए, ऐसा कैसे कभी संभव हो सकता है कि हम सब लोग गिरजा आराधना सभा में जाने के लिए उत्तेजित ना हो या धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने से उबने लगे। मैं समझता हूँ कि यह तभी संभव हो सकता है यदि हमारे हृदय बीते हुए एहसास के आभार के अनुभूति और पवित्र और विशिष्ट उपहार के धाक जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है, जीवन परिवर्तन की सच्चाई हमारे आंखों के सामने और हमारे उंगलियों पर है। परंतु कभी कभी हम शिष्यता के रास्ते पर आंख मूंद कर चलते हैं। अक्सर हम अपने आप को हमारे अपूर्ण सदस्यों द्वारा भटकाए जाते हैं बजाय अपने स्वामी के उदाहरण का अनुसरण करने के। हमें हीरो से भरे रास्ते को अपनाना है, लेकिन हम शायद ही उन्हें साधारण कंकड़ से भेद कर सकते हैं। जब मैं एक युवा पुरुष था, मेरे मित्र मेरे धर्म के बारे में पूछते थे। अक्सर मैं विभिन्नताओं को समझाने से शुरुआत करता था, जैसे ज्ञान के शब्द। दूसरे समयों में मैं अन्य मसीह धर्म के साथ समानताओं पर जोर देता था। इसमें से कोई भी उन्हें अपने उन्हें अधिक प्रभावित नहीं करता था, लेकिन जब मैं अपने स्वर्ग के पिता की उसके बच्चों के लिए आनंद की योजना के बारे में बात करता था, मुझे उनका ध्यान प्राप्त होता था। मुझे स्मरण है उधार की योजना के को अपने गिरजे की कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर चित्रण करने की कोशिश करता था। मैं गोलाकार करता और जो कि पुनर्जीवन नशावरता और इस जीवन के बाद हमारे स्वर्गीय अभिभावकों के पास वापस जाने का प्रतिनिधित्व करते थे। एक किशोर के रूप में इस उत्तेजित करने वाला संदेश को बांटने मुझे कितना पसंद था। जब मैं इस निम्न को अपने स्वयं के शब्दों में व्यक्त करता, मेरा हृदय परमेश्वर के लिए आभार से भाव विभोर हो जाता, जो अपने बच्चों से प्रेम करता है और उद्धार करता जिसने हमारे मृत्यु और नरक से मृत्यु दिलाई। मैं इस प्रेम आनंद और आशा के संदेश से गौरवित हो जाता था। कुछ मेरे मित्र कहा करते थे कि यह संदेश परिचित महसूस प्रतीत होता है, यहाँ तक कि ऐसी कोई चीज उनके धर्म में कभी दिखाई नहीं गई थी। यह ऐसा था जैसे कि वह इन बातों की सच्चाई को हमेशा से जानते थे, जैसा कि मैं किसी बात पर रोशनी डाल रहा था जो कि उन्हें मानने में पहले से ही घर किए हो। हमारे पास जवाब है। मैं विश्वास करता हूँ प्रत्येक मानव उसके हृदय में उसके जीवन के बारे में मौलिक प्रश्नों को लेकर चलता है। हम कहाँ से आए थे, मैं यहाँ क्यों हूँ, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, इस तरह के प्रश्न समय की सुबह से नश्वरता से पूछे जाते हैं। फिलोसोफर, स्कॉलर्स और पंडितों ने अपने जीवन और भाग्य जीवन जवाब देने के लिए लगा दिए हैं। मैं आभारी हूँ कि यीशु मसीह ने पुनर्स्थापित सुसमाचार जीवन के ऐसे जटिल प्रश्नों के जवाब देते हैं। ये जवाब अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह गिरजाघर सिखाते हैं। ये सच्चे, सीधे, सादे और आसानी से समझे जाने वाले हैं। ये प्रेरणा भरे हैं और इन्हें हम 3 वर्ष में बच्चों को कक्षा में सिखाते हैं। भाई और बहनों, हम अनंत जीवन है, अनंत जीव हैं, बिना शुरुआत और बिना अंत के। हमारा हमेशा से अस्तित्व रहा। हम वास्तविक से पवित्र, अमरत्व, स्वर्गशक्तिमान, स्वर्गीय अभिभावक के आत्मिक बच्चे हैं। हम प्रभु परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य से आए हैं। हम एलोहिन, महान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के राज्य के घराने के हैं। हम उसके साथ पहले से के जीवन में चला फिरा करते थे। हम उसे बोलते सुनते थे, उसकी महिमा के गवाह और उसके तरीकों से सीखा है। हम आपने और मैंने महान परिषद में भाग लिया था, जहां हमारे प्रिय पिता हमारे लिए उसकी योजना के साथ उपस्थित थे कि हम पृथ्वी पर आएंगे, नश्वर शरीर प्राप्त करेंगे, अच्छे और बुरे के बीच चुनाव का सीखेंगे, इस तरह हमारी प्रगति करेंगे जो कि अन्यथा संभव नहीं होगी। जब हमने पर्दे से गुजरकर नश्वर के जीवन के प्रवास किया था, हम जानते थे कि पहले का जीवन समर्थन नहीं हो रहेगा, वहां पर विरोध और विपत्त और लालच होगा। परंतु यह सब भी जानते थे कि भौतिक शरीर को प्राप्त करना प्रभु प्रमुख महत्वता होगी। हम जानते थे कि आप और हम गलतियां करेंगे यदि अति गंभीर वाली, लेकिन हम यह भी जानते थे कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आने की जीवन जीने और सर्वप्रथम उसके जीवन का अनंत बलिदान करने की प्रतिज्ञा की थी। हम जानते हैं कि हम अपना हृदय उसको देते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसकी पूरी क्षमता से शिष्यता के मार्ग पर अपनी पूर्ण आत्मा के साथ चलने का प्रयत्न कर हम धूल कर साफ हो सकते हैं और एक बार फिर से हमारे प्रिय स्वर्ग के पिता की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। तो यीशु मसीह ने बलिदान में विश्वास के साथ आपने और हमने अपनी स्वच्छ से स्वर्गीय पिता की योजना को स्वीकार किया था। इसीलिए हम यहाँ पर एक सुंदर पृथ्वी उपग्रह पे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है और हमें उसे चुनकर स्वीकारना है। हमारा नश्वर जीवन इसलिए यह सिर्फ अस्थाई है और मौत के साथ हमारा भौतिक शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका हमारा आत्मिक अस्तित्व खत्म नहीं होगा। हमारी आत्मा लगातार जीवित रहेगी और पुनरुत्थान का इंतजार करेगी। एक उपहार हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता और उसके पुत्र यीशु द्वारा दिया गया है। वह न्याय का दिन दया और प्रेम का दिन होगा। एक दिन जब टूटे हुए हृदय चंगे होंगे, जब दुखों के आंसुओं को आभार से आंसुओं के साथ बदला जाएगा और जब कुछ सभी सिखाए जाएंगे। हाँ, वह पाप के कारण घन दुख होगा। हाँ, हमारी गलतियों के कारण वह पछता होगी और यहाँ तक कि मानसिक वेदना होगी। हमारी मुखरता और हमारी छिटकता उसके कारण महान भविष्य के मौके को हम खो देंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि हम ना सिर्फ परमेश्वर के न्याय के साथ संतुष्ट होंगे, हम आश्चर्यचकित और उसकी अपार करुणा, दया, उदारता और हमारे उसके बच्चों के लिए प्रेम के द्वारा अभिभूत होंगे। यदि हमारी इच्छा और काम अच्छे हों, यदि हमारे जीवित परमेश्वर में विश्वास हो, तब हम आगे देख सकते हैं। मोरोनी ने क्या कहा था? अनंत निर्णायक महान यहोवा के आनंददायक न्यायालय को। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रिय मित्रगण, क्या यह हमारे हृदयों और मन को अद्भुतता से भर नहीं देता और हमारे स्वर्ग पिता की हमारे लिए तैयार की हुई आनंद की योजना पर आधार से विचारना नहीं है? क्या यह हमको महिमा भरा भविष्य को जानते हुए अनकही खुशी से भर नहीं देता है? क्योंकि हम सब के लिए जो प्रभु में आने का इंतजार करने की तैयारी करते हैं। क्या आपने कभी कभी ऐसा अचंभा और खुशी नहीं महसूस की? मैं आपको अभी साधारण सुसमाचार के पुनर्स्थापना की गवाही सच्चाई खोजने, अध्ययन और चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। चलो अपने मन को अनंत काल की गम्भीरता को लें और उन्हें आप के लिए पवित्र उद्धार की योजना की गवाही देने हैं। यदि आपको इस बातों का एहसास पहले हुआ होता, मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या आप अभी भी महसूस करते हैं? हाल ही में मुझे बेलफास्ट आयरलैंड जाने का मौका मिला था, जबकि वहां पर मैंने बेलफास्ट कोर्स ऑफ आर्म्स में ध्यान दिया, जिस पर मोटो शामिल था, प्रो टेंटो क्विड रियोंडो, एंड या इतने लेने के लिए मैं बदले में वापस क्या दूं? मैं हम सभी को इस प्रश्न पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे परमेश्वर ने हम पर प्रकाश और सच्चाई की बाढ़ उड़ेला है। वापस लौटने के लिए हमें क्या दे सकते हैं? हमारे प्रिय पिता साधारणता से पूछते हैं कि हम सच्चाई से जीते हैं जिसे हमने पाया था, और कि हम मार्ग का अनुसरण करें जो उसे प्रदान किए गए हैं। इसलिए हमें प्रोत्साहित होना है और आत्मा की मार्गदर्शन में भरोसा करना है। हमें शब्दों में और कमर में अपने साथियों के साथ अद्भुत और प्रेरणा से पूर्ण परमेश्वर के आनंद की योजना को बांटना है। हमारा उद्देश्य हमारे परमेश्वर और उसके बच्चों के लिए प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वे हमारे भाई और बहन हैं। यह शुरुआत है कि बहुत कुछ के बदले में क्या कुछ कर सकते हैं। किसी दिन हर एक के घुटने झुकेंगे और सबकी जीभ स्वीकार करेगी कि परमेश्वर का रास्ता सच्चा है और उसी योजना संपूर्ण है आपके और मेरे लिए। चलो वह दिन आज का दिन हो। चलो हम सब घोषित करते हैं बूढ़े याकूब के साथ, ओ हमारे परमेश्वर की योजना कितनी महान है।
Of this I testify indeed.
इस पर मैं साक्षी देता हूँ, अपने लिए मैं आशीषें छोड़ते जाता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Nobel laureate Elie Wiesel was in the hospital recovering from
Nobel laureate Elie Wiesel अस्पताल में open heart चिकित्सा से उभर रहे थे जब उन्हें उनका 5 वर्षीय पोता मिलने आया। जैसे ही छोटे से लड़के ने उनकी आंखों में देखा, उसे उनका दर्द दिखा। दादाजी उसने पूछा, यदि मैं आपको अधिक प्रेम करूंगा तो क्या आपको कम दर्द होगा? आज मैं उसी समान प्रश्न हम सबसे करता हूं। यदि हम उद्धारकर्ता से अधिक प्रेम करेंगे, क्या हम तक कम भुगतेंगे? जब उद्धारकर्ता ने अपने चेलों को अपना अनुसरण करने को कहा, वे मूसा के नियम को मान रहे थे, जिसमें आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत शामिल था। परंतु उद्धारकर्ता उस नियम को अपने बलिदान से पूर्ण करने के लिए आए। उन्होंने एक नया सिद्धांत सिखाया, परंतु मैं ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। चेल चेलों को सिखाया गया कि वह प्राकृतिक मनुष्य को अपने मार्ग से उद्धारकर्ता के प्रेम और देखरेख के मार्ग की ओर मुड़ना है। प्रतिशोध को क्षमा में बदलने से और विवाद को करुणा और दया द्वारा एक लोगों से सहभागी होने में संकोच करते थे, तब उद्धारकर्ता ने धैर्य से सिखाया, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया वह मेरे ही साथ किया, या जैसा भविष्यवक्ता ने मॉर्मन की पुस्तक में विवरण दिया, जब तुम अपने भाइयों की सेवा में हो तब तुम केवल अपने परमेश्वर की सेवा में हो।
When you're in the service of your fellow beings, you're only in the service of your God.
As the Savior's Latter-day Disciples, उद्धारकर्ता के अंतिम दिनों के प्रेरित होने से हम उनमें परमेश्वर के बच्चों को प्रेम और उनकी सेवा द्वारा आते हैं। जैसे कि हम करते हैं, हम आपत्ति, कठिनाइयां और शरीर की पीड़ा को ना दूर कर सके, परंतु हम आत्मिक और तौर से कम कष्ट पाएंगे। अपने संघर्ष में भी हम आनंद और शांति को अनुभव करेंगे। हमारा मसीह प्रेम और सेवा सहज रूप से घर में शुरू होती है। माता पिता, आपको अपने बच्चों और युवा के लिए स्नेही अध्यापक और प्रचारक बुलाया गया है, वह आपके अनुसंधानता हैं। आप उत्तरदायित्व रखते हैं उनको परिवर्तित करने का। सच्चाई में हम सब परिवर्तित होने को खोज रहे थे, जिसका अर्थ है उद्धारकर्ता के प्रेम से भर जाना। यीशु मसीह के अनुयायी होने से उनका प्रेम हमें इस नस्वर सफर में एक दूसरे और सहारा बनने के लिए प्रेरित करता है। हम अकेले नहीं कर सकते। आपने मुझे पहले यह कहते हुए कहावत बांटते सुना होगा, आप मुझे उठाएं, मैं आपको उठाऊंगा, और हम उन्नति करेंगे। प्रेरित होने से ऐसा हम तब करते हैं जब हम बपतिस्म लेते हैं, अपनी इच्छा दिखाते हैं, एक दूसरे का बोझ उठाते हैं ताकि वे हल्का हो, एक दूसरे को सिद्धांत के राज्य के विषय में सिखाना ही एक दूसरे के लिए प्रेम और सेवा है। माता पिता और दादा दादी, हम संसार की व्यवस्था से दुखी होते हैं कि स्कूल नैतिक चरित्र नहीं सिखा रहे, परंतु बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। हम ऐसे श्रेणियों को अपने परिवार में सिखाने का लाभ ले सकते हैं। अभी इन्हें खिसकने ना दें। जब भी सुसमाचार के बारे में आपको आपके विचार और जीवन की शिक्षाएं बांटने का अवसर प्राप्त हो, सब कुछ करना रोक कर अपने बच्चों और पोतों के साथ बैठ और बातें करें। हमें यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम व्यवसायिक सुसमाचार के प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं। कोई प्रशिक्षण कक्षा या नियम पुस्तिका निजी धर्म शास्त्र को पढ़ने, प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा के निर्देश को खोजने के जितना ही मददगार है। पवित्र आत्मा आपको मार्ग पर ले जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। माता पिता की बुलावट में आपको और अपने बच्चों को सही मार्ग पर सिखाने की भेंट शामिल है। याद रखें, परमेश्वर का प्रेम हमें धार्मिकता की शक्ति से प्रभावित करना है। हम उन्हें प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे पहले प्रेम किया। युवा, आप हमारे सबसे प्रभावशाली सुसमाचार के शिक्षक हैं। आप गिरजा सीखने के लिए आते हैं ताकि आप घर जाकर अपने परिवार, पड़ोसी और मित्रों को सिखा सकें। डरो मत। गवाही देने के लिए विश्वास करें कि जो आप जानते हैं वह सच है। सोचें कि पूरे समय के प्रचारक बढ़ते हैं क्योंकि वे विश्वसनीय रूप से एक प्रतिष्ठित जीवन जीते हैं। अपने समय और गुण का इस्तेमाल करके और अपनी गवाहियां द्वारा दूसरों की सेवा और उन्हें आशीषित करते हैं करके, जैसे कि आप अपनी सुसमाचार की गवाही को बांटते हैं, आपका विश्वास पनपता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। हमारी कुछ सबसे असरदार मसीह सेवा का आयोजन परिवार में धर्म शास्त्र पढ़कर, पारिवारिक प्रार्थना और परिवार परिषद की सभा द्वारा की जाती है। 100 वर्षों से अधिक गिरजा के अध्यक्षों ने हमें बिना रुकावट के हर हफ्ते निर्धारित समय रखने के लिए कहा है, परंतु हम में से कुछ उन आशीषों को खो रहे हैं। पारिवारिक घरेलू संध्या माता या पिता के भाषण नहीं है, यह हमारा पारिवारिक समय सरल आत्मिक विचारों और अनुभवों को बांटने का है, अपने बच्चों को देखभाल और बांटना सिखाने में मदद करना है, एक साथ आनंद मनाना है, एक साथ गवाही देना है, बढ़ना और उन्नति करना है। हर हफ्ते पारिवारिक घरेलू संध्या और आयोजन करके हमारा एक दूसरे के लिए प्रेम मजबूत होगा और हम कम दुख भोगेंगे। हम याद रखें, सबसे आवश्यक कार्य हम अपने परिवार में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा करते हैं। जब भी हम अपनी आवाज को क्रोध से उठाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे और हमारे परिवार का साथ छोड़ देती है। जब हम प्रेम के से बोलते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ रह सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बच्चों और पोता पोतियों को हमारे प्रेम हमारा उन्हें समय समर्पण करने से मापना चाहिए। सबसे ऊपर अपना धैर्य ना खोए और कभी हार ना माने। धर्मशास्त्र हमें बताता है कि जब कुछ स्वर्गीय पिता के आत्मिक बच्चों ने उनकी योजना का अनुसरण ना करने का चुनाव किया, स्वर्ग भी रोया। कुछ माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को प्रेम किया और सिखाया है, वे भी रोते हैं। जब उन्हें बच्चों की योजना का अनुसरण करने को नहीं चुनते, माता पिता क्या कर सकते हैं? हम दूसरों के चुनाव को प्रार्थना से दूर नहीं कर सकते। याद करें, खर्चीले पुत्र के पिता को जिन्होंने धैर्य से अपने पुत्र का इंतजार किया, अपने आप आने का हर समय उसी राह देखना, जबकि वह अपनी राह से काफी दूर था। हम मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि कब बोलना और क्या बोलना है। याद करें, हमारे बच्चे और परिवार के सदस्यों के ने उद्धारकर्ता का अनुसरण करना इस जीवन के पहले ही चुन लिया था। कभी कभी केवल उनके अपने जीवन के अनुभवों से पवित्र भावनाएं जागृत होती हैं। अंत में प्रभु को प्रेम करने और उनको अनुयायी बनाने का चुनाव अपना होना चाहिए।
Has to be their own. There is another special way disciples show their love.
एक और विशेष तरीके से चेले अपना प्रेम उद्धारकर्ता की ओर दिखाते हैं। आज मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं जो प्रभु की सेवा देखरेख वाले बन कर देते हैं। प्रभु आपको कितना प्रेम करता है, अपनी शांति में आघोषित सेवा आप उसका अनुसरण कर रहे हैं जिसने आपसे वादा किया है। इस दशा तेरा पिता जो गुप्त देखता है तुझे प्रफुल्लित देगा। मैं अपने पड़ोसी के बारे में सोचता हूँ जिनकी पत्नी अल्जेहर मेयर की बीमारी से पीड़ित थी। हर परिवार व गिरजा की सभा के लिए उनके कपड़े पहनाने में, बाल बनाने में, मेकअप लगाने में और उनके कान में कुंडल पहनाने में मदद करते थे। ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए वह वार्ड में हर पुरुष और स्त्री के लिए उदाहरण थे। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, मैं बस अपने पति को फिर से देखना चाहती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, ओह अच्छा। मैं सेवा के बारे में अपने जीवन के विशिष्ट देखरेख करने वाले को बिना स्वीकार नहीं बोल सकता। मेरे लिए उद्धारकर्ता का विशेष शिष्य मेरी अनंत साथी मैरी, उन्होंने सब कुछ दयालुता और प्रेम के पोषण में दिया है। उसके हाथ एक कोमल है, सहारा देने वाले स्पर्श को दर्शाते हैं। आज मैं उसके बिना यहाँ नहीं होता।
And be with her in eternal life. If you are suffering deeply,
यदि आप अकेले ही पीड़ित हैं, मैं आपसे निरोध करता हूं कि उद्धारकर्ता को आपकी देखरेख करने दें। उन्हें कंधे पर झुके और उनके आश्वासन को स्वीकार करें। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। भाइयों और बहनों, यदि अपने पूर्ण रूप से नहीं किया तो और भी अधिक क्षमा, दया और प्रेम के मार्ग पर मुड़ें। हम उस युद्ध को त्याग दें जो स्वाभाविक मनुष्य के मन में अक्सर रोष लेता है, और मसीह के देखभाल, प्रेम और शांति को घोषित करें। यदि आप परमेश्वर की महिमा और अच्छाई ज्ञान के विषय में जान गए हैं, और वह बलिदान जो संसार की नींव से तैयार किया गया है, आपका मन एक दूसरे को कभी भी हानि पहुंचाने का नहीं होगा, परंतु शांति में रहेंगे, और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे वह परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करें और ये दूसरे के साथ लड़ झगड़ने, परंतु आप उन्हें एक दूसरे से प्रेम करना और एक दूसरे की सेवा करना सिखाएंगे। उद्धारकर्ता के सूली पर चढ़ने से कुछ पहले उन्होंने अपने प्रेरितों को सिखाया, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे रखा, और यदि तुम मुझे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं साक्षी देता हूँ कि उद्धारकर्ता की सच्ची अवस्था हमारे लिए थोर वदेशन की प्रतिमा क्राइस्ट अजज में धारण है। उनके हाथ निरंतर फैले हुए हैं, हम उन्हें प्रेम करके और एक दूसरे की सेवा और उनकी आज्ञाओं का पालन करके उनका अनुसरण करते हैं। मैं अपनी विशेष साक्षी देता हूँ कि वह जीवित हैं और हम संपूर्ण प्रेम से प्रेम करते हैं। यह उनका गिरजा है। आज इस धरती पर थॉमस एस मॉन्सन उनके भविष्यवक्ता हैं। मेरी प्रार्थना है कि हम अपने स्वर्ग पिता, उनके पुत्र और भी अधिक प्रेम करें और कम भुगतें। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
In the struggles of mortality, we are never left alone.
अपनी प्रार्थना का हर लम्हे अपने पिता के साथ बिताए हुआ पुत्र के नाम में पवित्र आत्मा के समर्थ में पवित्र समय हो सकता है। नश्वरता के संदर्भ में हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं। अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने लड़ाई लड़ने के लिए, विपत्ति को झेलने या प्रश्नों के जवाब न दे पाने में यीशु मसीह दृष्टांत के साथ सिखाता है। नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। अब उसने एक न्यायी को कहा जो ना परमेश्वर से डरता है ना किसी परमेश्वर की परवाह करता है। हर दिन एक विधवा उसके पास आती, आग्रह करती कि मेरी विपत्ति से मुझे बचा। पल भर के लिए नई ने उसे कोई सहायता ना दी, लेकिन उसकी विश्वसनीयता लगातार अनुरोध के परिणाम स्वरूप आखिरकार न्यायी ने सोचा तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुनूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम कर दे। तब यीशु समझता है, सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तब प्रभु ने प्रश्न किया, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या तुमको लोग मिलेंगे जो कि जानते हो परमेश्वर विश्वास में परमेश्वर के कैसे कहते हैं और कौन है जो उद्धार करने को तैयार है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उच्चतम सारी आशीषें प्रार्थना के द्वारा उपलब्ध होती हैं, और यदि हम विश्वास में प्रार्थना करना सीखें, हम प्रिय स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं और हम उससे व्यक्तिगत और सीधे तरह से बातचीत कर सकते, आनंद ले सकते और हम प्रार्थना करते हैं। यदि सहृदय से और अच्छी अभिलाषा से मसीह में विश्वास करेंगे और फिर उसके काम के मुताबिक उत्तर के साथ उससे हम पवित्र आत्मा की प्रोत्साहनता से पाते हैं, विश्वास में हम प्रार्थना करते हैं, हम सुनते हैं और हम पालन करते हैं कि हम उनमें से एक पिता और पुत्र बनने के लिए सीख सकते हैं। एक विश्वास की प्रार्थना स्वर्ग से आशीषें भेजने का उत्तम मार्ग खोलती है, उधारकर्ता सिखाता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे द्वार खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। उनकी सच्चाई की खोज पे जोसेफ स्मिथ ने पढ़ा, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलहाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, उसकी विश्वास की प्रार्थना में स्वर्ग खोला जाएगा। परमेश्वर पिता और उसका पुत्र यीशु मसीह मसीह में नीचे आए और जोसेफ से बोले, युग के पूरे होने के समय में आगे आगे चलना है, हमारे लिए चमत्कारी चंगाई देना, शक्तिशाली सुरक्षा, पवित्र ज्ञान, उद्धारता से समाधान देना, बहुमूल्य शांति जवाबों के मध्य है जो कि आता है जब हम अपनी आत्मा को विश्वास में ईमानदारी से देते हैं। हम हमारे पिता से यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की समर्थ से प्रार्थना करते हैं, इसलिए ईश्वर तत्व के लिए सभी तीनों सदस्य मनोहरता में हमारे अंतिम प्रयास में लग जाते हैं। हम हमारे स्वर्गीय पिता और सिर्फ उससे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वह स्वर्ग में परमेश्वर है जो असीम और अनंत, अनंत से अंत तक स्वर्ग और पृथ्वी का और सब चीजों में उसमें है, निर्माण करता है, हमारे रचयिता के रूप में उसने हमें आज्ञाएं दी हैं कि हमें उससे प्रेम और सेवा करनी चाहिए। सिर्फ सच्चा और जीवित परमेश्वर वो ही सिर्फ एक है जिसकी हमें आराधना करनी चाहिए। जैसे आप स्वर्गीय पिता से परमेश्वर में प्रार्थना करते हो, वह हमारे कांटों कष्टों में तुम्हें सांत्वना देगा, उसके प्रेम में आनंद विभोर रहोगे। अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग ने बांटा कि उनके पिता ने कैंसर की हारती हुई लड़ाई के दौरान प्रार्थनाएं करते हुआ उन्हें परमेश्वर और उसके बच्चों के बीच का गहरे व्यक्तिगत संबंध की शिक्षा दी। जब दर्द ज्यादा बढ़ गया, उसने उन्हें बिस्तर के पास घुटनों पर सुबह पाया था। बहुत कमजोर के कारण वह वापस बिस्तर पर नहीं जा पाए थे। उन्होंने हमें बताया वह हमारे अपने स्वर्ग के पिता से प्रार्थना में पूछा करते क्यों वह इतनी पीड़ा झेल रहे हैं, जबकि वह हमेशा अच्छा रहने की कोशिश करते रहते हैं। वह बोले, एक करुणा भरा जवाब आया, परमेश्वर का बहादुर बेटों की जरूरत है, और उनका सैनिक वृत्ति का आनंद भरोसा करते हुए हुआ कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, उनकी सुनता है और उन्हें ऊपर उठाएगा। वह जल्दी यह जानकर आशीषित हुए और कभी नहीं भूले कि प्रिय परमेश्वर उतना ही समीप है जितने की एक प्रार्थना। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मसीह में हमारा उद्धार है, और क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हम पिता के पास मसीह में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हम पिता के पास यीशु मसीह के पवित्र नाम में आते हैं, क्योंकि वह पिता के साथ हमारा वकील है और वह हमारे कारण निवेदन करता है। उसने पीड़ा झेली, खून बहाया और पिता की महिमा के लिए मारा गया हमारे लिए। उद्धार पर उसी करुणा भरी अर्जी ने हम सबके इस जीवन में शांति के लिए रास्ता खोल दिया और आने वाले संसार के लिए अनंत जीवन। वह नहीं चाहता था कि हम अधिक पीड़ा उठाएं या जरूरत से ज्यादा अंत तक परेशान हों। वह हमें हम अपनी ओर मोड़ना चाहता है, और उसने हमारे बोझ को कम करने की अनुमति मांगी है। हमारे हृदय को चंगा और उसके शुद्ध समर्थ से अपनी आत्मा की सफाई करने दे। हम अब कभी नहीं चाहते उनका नाम शब्दों को दोहराते हुए व्यर्थ में ना लिया जाए। सच्ची प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के नाम में करना हमारे भक्ति प्रेम का भाव है। हमारा अनंत उभार और उसकी अचल कामना उसके सम्मान प्रार्थना करने की है। जैसे वह कहता था वैसे ही करना, वैसे जैसे वह करता था। हमें प्रार्थना पवित्र आत्मा के समर्थ से करनी है, क्योंकि वे जो आत्मा में मांगते हैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगते हैं। वे हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे विचारों का मार्गदर्शन कर सकता है ताकि हमारे बोल परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाए। मांगो नहीं, अपनी वासनाओं को पूरा करने की याचना मत करो, परंतु दृष्टता के साथ यह याचना प्रकट करो कि तुम किसी भी प्रकार के लालच में नहीं पड़ोगे और सच्चे और चेतन परमेश्वर की सेवा करोगे। यह ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है कि हम जाने कैसे प्रार्थना करते हैं, परंतु यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम जाने कैसे हमारी प्रार्थना का उत्तर पाया जाता है। विवेकी बने रहे, सावधान रहे, साफ आंखों से दर्शन देखने में समर्थ हों, परमेश्वर की शुद्ध कामना और हमारी चिंता के उद्देश्य को समझें। अध्यक्ष आयरिंग भारते हैं, मेरे पास प्रश्नों के उत्तर हैं, जो उत्तर बहुत ही स्पष्ट थे। वह मुझे शांति चाहिए थी, वह एक जोरदार जरूरत के द्वारा कि परमेश्वर क्या चाहता है जानने के लिए। यह तब हुआ जब प्रिय स्वर्गीय पिता से जवाब मन में स्थिर छोटी सी आवाज द्वारा बोला सकता था और हृदय पर लिखा जा सकता है। जब उधारकर्ता गतसमनी के बगीचे में जाता है, उसकी आत्मा अधिक दुखी थी। यह मौत तक पीड़ा में वह सिर्फ अपने पिता की ओर मुड़ सकता था। उसने आग्रह किया कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टाल जाए, परंतु वह कहता है, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसे नहीं कहूँ, नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। पाप पर हित होने के बावजूद उद्धारकर्ता ने पीड़ाएं झेली और कष्ट उठाए और हर प्रकार के लालच उसे दिखा गए। बीमारियों और उसके लोगों की कमजोरियों में शामिल थी। वह शरीर के अनुसार दुख उठाता रहा कि वह लोगों के पापों को अपने ऊपर ले सके और उसके उल्लंघनों को उसकी मुक्ति की शक्ति अनुसार मिटा सके। 3 बार उसने प्रार्थना की, पिता मेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, प्याला हटाया ना जाए। विनम्र में विश्वासी प्रार्थना ने उसे को प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए और उसके पवित्र मिशन को पूरा किया। हमारे उद्धार के लिए तैयार हुआ कि वह शायद पश्चाताप, विश्वास और पालन और अनंत की आशीषों को ना पा सके। जो उत्तर हमें परमेश्वर में मिलता शायद हमारी इच्छा अनुसार ना हो, लेकिन परमेश्वर के समय हमारी प्रार्थनाएं जीवन रेखा और कोमल दाया बन जाती हैं। हमारे निवेदन के समय में हमें आगे बढ़ने में सामर्थ्य, आगे बढ़ना और जो कुछ करने के लिए हमें नियुक्ति किया गया है पूरा करने देती है। हमारे संतों के संकट में समय में जीने के लिए प्रभु कहता है, हमारे हृदय शांत रहे क्योंकि सारे शरीर मेरे हाथों में है। शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। चाहे हमारी प्रार्थनाएं गुप्त रूप में परिवारों में, गिरजा या मंदिर में, चाहे हम टूटे हृदय से और दुखी आत्मा से स्वर्गीय ज्ञान को ढूंढते हुए या अंत तक बल देते हुए करें जाए, हमें हमेशा पूरे दिल से या परमेश्वर से लगातार हमारी कुशलता और जैसे हमारे आसपास की उनकी सलामती के लिए की जाती है। वास्तविक इच्छाएं आभार की एक आत्मा में बहुतायत, आशीषें और आभार के लिए जीवन का एक सबक होती है। हमारे हृदयों में मसीह में दृढ़ विश्वास, आशा की ज्योति में और परमेश्वर और सभी मनुष्य से प्रेम से दी जाती है। प्रार्थना परमेश्वर का उपहार है। हमें कभी भी अकेला या खोया हुआ महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं गवाही देती हूँ कि हर प्रार्थना का बहुमूल्य लम्हा पिता के साथ गुजारा गया, पुत्र के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पवित्र समय हो सकता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
On a signal from the conductor,
संगीतकार के निर्देश पर कलीसिया खड़े होकर गायक मंडली के साथ मिलकर गाएगी रिडीमर ऑफ इजराइल। संगीत के बाद हम 70 की अध्यक्षता के एल्डर क्रेग सी एक्सटेंशन को सुनेंगे। उनके पश्चात 70 के एल्डर जॉन ए उसाट और जे डेविन कॉर्निश बोलेंगे। उनकी टिप्पणी के पश्चात गायक मंडली टेक टाइम टू बी होली गाएगी।
This is the 186th
Assembly. ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 186वां अर्धवार्षिक महासम्मेलन है.
Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph Smith, he warned that
जब मोरोनाई पहली बार जोसेफ स्मिथ के पास आया, उन्होंने जोसेफ को चेतावनी दी थी, उनका अच्छे और बुरे के लिए राष्ट्रों के बीच जाना जाएगा. हमने उस भविष्यवाणी को पूरा होते देखा है. अच्छाई और बुराई के युद्ध के बीच भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने सुसमाचार पुनर्थान द्वारा दोनों प्रेरित विश्वासी जो उनके अनुयायी हैं और वे जो उकसाए विरोधी निरंतर जीवन के कारण क्रोधवंश में लड़ते हैं और वह खुश जोसेफ स्मिथ के विरुद्ध हैं. ये युद्ध नहीं है. ये तब से शुरू हुआ जब जोसेफ स्मिथ वाटिका में गए. आज भी निरंतर इंटरनेट पर दृष्टांत संकलित करते हैं. प्रभु ने निजी रूप से जोसेफ स्मिथ को घोषित किया, इस पृथ्वी के अंत भी आपके नाम की जांच करेगा और मुख्य आप पर उपहास करेंगे और नरक आपके विरुद्ध क्रोधित होगा. जबकि मन से शुद्ध बुद्धिमान महान धार्मिक सलाहों को खोजेंगे और अधिकार और आशीषों के निरंतर उनके हाथ द्वारा. आज मैं अपनी गवाही उन सबको देना चाहता हूं जो जोसेफ स्मिथ जूनियर के पुनर्स्थापन भविष्यता का पवित्र मिशन के बेहतर समझने की कोशिश करते हैं. हमें डरने की जरूरत नहीं है. जोसेफ के मिशन की गवाही जो भविष्यवक्ता जो दूरदर्शी प्रकटकर्ता रूप के देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमेशा भविष्यवक्ताओं के द्वारा ही काम किया है. क्योंकि सच जोसेफ स्मिथ द्वारा लाया गया और अत्यधिक स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह के विषय में जानते हैं. अब उनके दिव्य गुणों को जानते हैं, उनका निरिश्ता एक दूसरे के साथ और हमारे लिए और मुक्ति की महान योजना जो उपस्थिति में हमारा वापस जाना संभव करता है। जोसेफ के लिए अध्यक्ष ब्रिगम ने घोषणा की, ये एक फैसला अनंत की परिषद में सुनाया गया, इससे भी पहले पृथ्वी की नींव डाली गई कि वही मनुष्य होना चाहिए। संसार के इस आखिरी दिनों में जो परमेश्वर के वचन को अपने लोगों तक लाएगा और कुंजियों को पूर्णता को स्वीकारेगा और प्रोहित की शक्ति जो परमेश्वर के पुत्र की है, प्रभु की आंख उस पर है, क्योंकि वे अनंतता में इस आखिरी दिनों के लिए पूर्व निर्धारित किए गए हैं। इस महान कार्य की तैयारी से जोसेफ स्मिथ एक स्नेही परिवार में पैदा हुआ जिन्हें हर दिन की तंगियां और जीवन के संघर्ष को अनुभव करना पड़ा। जैसे जोसेफ बड़े होने लगे उनकी परमेश्वर की ओर एहसास गहरा और कई बार ममरिक होने लगा, किंतु उन्हें उलझन थी उन दिनों के प्रचार को द्वारा सिखाने वाले परस्पर विरोधी धार्मिक विचारों से। भाग्यवश युवा जोसेफ ने अपने प्रश्नों से अपने विश्वास को शक्तिहीन नहीं होने दिया। उन्होंने बाइबल में उत्तरों को ढूंढा और इस सलाह को पाया, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलहाना दिए सबको उदारता से देता है और उसे उसको दी जाएगी। जोसेफ ने स्मरण किया, कभी भी धर्मशास्त्र का कोई भी पद इतनी अधिक शक्ति के साथ मनुष्य के मन तक इतना नहीं आया जितना कि ये मुझे इस समय है। ऐसा लगा कि यह पूरे बल से मेरे मन के हर प्रचार को प्रवेश कर रहा है। मैंने बार बार इस पर विचार किया। साधारण विश्वास के साथ जोसेफ ने इन आत्मिक भावना की ओर काम किया। उन्होंने एक शांत स्थान को चुना, घुटने टेके और अपने मन की इच्छा को परमेश्वर के प्रति अर्पण करना शुरू किया। जोसेफ ने इस विवरण में बड़ा सामर्थ्य कि क्या हुआ। मैंने प्रकाश को एक स्तंभ ठीक अपने ऊपर सिर के ऊपर देखा, सूर्य की रोशनी से अधिक, जो धीरे धीरे मुझ पर उतरा। जब प्रकाश मुझ पर आया मैंने दो श्रेष्ठ पुरुषों को देखा जिनके प्रकाश महिमा हर विवरण को चुनौती देते हैं, मेरे ऊपर हवा में खड़े देखे। उनमें से एक ने बोला, मेरा नाम पुकारते हुए बोला, दूसरे की ओर इशारा करते हुए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसको सुनो। ये जोसेफ का पहला दृष्टांत था। उसके कुछ वर्षों पूर्व जोसेफ ने मॉर्मन की किताब का अनुवाद परमेश्वर की भेंट और शक्ति से किया। कई स्वर्गीय व्यक्तियों ने उन्हें देखा, सच को पूर्ण स्थापित किया और आशक्तियों को खो दिया। ये दिव्य संचार ने सबकी खिड़कियों को खोला और हमारे दर्शन में अनंत की महिमा और जोसेफ का जीवन बड़ी खड़ी गवाही है कि यदि तुम में से कोई बुद्धि की घटी हो पर परमेश्वर से विश्वास से पूछा और उत्तर हो। परंतु अधिकतम आत्मा की शक्ति से इस हमें से बहुतों के लिए भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ की साक्षी तब शुरू होती है जब हम मॉर्मन की पुस्तक को पढ़ते हैं। मैंने सबसे पहले मॉर्मन की पुस्तक को आदि से अंत तक एक तब तक प्रत्यकाल युवा सेमिनारी विद्यार्थी होते हुए देखा। अपनी चंचल लड़कपन की कल्पना के साथ मैंने निर्णय किया कि मैं ऐसा पढ़ूंगा जो कि मैं जैसा कि मैं जोसेफ स्मिथ हूँ। मॉर्मन की पुस्तक के सत्यों को पहली बार खोजें। इसका मेरे जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि आज भी मैं निरंतर मॉर्मन की पुस्तक को उसी तरह से पढ़ता हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ कि ऐसा करने से मेरी प्रशंसा भविष्यता की ओर इस बहुमत पुस्तक की पूर्ण स्थापना का सच हुई है। उदाहरण के तौर पर कल्पना करें, जोसेफ स्मिथ की भावनाओं को जैसे ही पापों की क्षमा और के लिए बपतिस्मा के पदों को अनुवाद है, जिन्होंने कहा था कि कोई भी स्थित गिरजा की संबंधित नहीं हो सकते, प्रकृति रूप से इस बचाव की धर्म विधियों के विषय में प्रश्न थे। उनके प्रश्न एक बार फिर उन्हें प्रार्थना की ओर ले गए और प्रार्थना यूहन्ना बपतिस्मा की भेंट की ओर से लगे। उन्हें या गौर करें कि जोसेफ के कैसा महसूस हुआ होगा जब उन्होंने पहली बार ये तीखा सीखा होगा कि यीशु मसीह ने प्राश्चित गोलाधार में लोगों से भेंट की कि उन्होंने देखा, उनके लिए प्रार्थना की, उन्होंने बीमारों को तंग किया, बच्चों को आशीष दी, पवित्र अधिकार दिए और उनके लिए प्रभु भोज का प्रबंध किया, जो उसको उस समय ये एहसास नहीं हुआ था। परंतु जो उन्होंने मसीह के प्राचीन गिरजाघर की धर्म विधियों और संस्था के विषय में सीखा, उसने उन्हें बाद में प्रभु की मदद की पृथ्वी के गिरजा घर को पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार किया। मॉर्मन की पुस्तक के अनुवाद के दौरान जोसेफ और उसकी पत्नी एमा ने अपने यीशु पुत्र की मृत्यु का शोक व्यक्त किया। उन दिनों प्रचारक सामान्यता से सिखाते हैं कि जिन बच्चों की मृत्यु बपतिस्मे के बिना हो जाती है उन्हें हमेशा के लिए अपराधित किया जाता है। इसे मन में रखकर जोसेफ को ऐसा महसूस होने लगा जब उन्होंने बेशकता मॉर्मन की इन बातों का अनुवाद किया और उनके छोटे बच्चों को ना तो पश्चाताप की आवश्यकता है ना ही बपतिस्मे की, परंतु छोटे बच्चे मसीह में जीवित हैं और यहाँ तक कि संसार में अत्यधिक सर्वथा संभवतः युवा जोसेफ के लिए मॉर्मन की पुस्तक सबसे आश्चर्यजनक पद दो नफी का तीसरा अध्याय होगा। इस अध्याय में एक प्राचीन भविष्यवाणी एक चुने हुए दिव्यदर्शी की शामिल है जिन्हें प्रभु इन अंतिम दिनों में खड़ा होगा। जोसेफ स्मिथ एक दिव्यदर्शी अपने पिता के नाम पर खड़ा हो गया। ये भविष्य का भविष्यवक्ता अत्यधिक माननीय होगा और महान श्रेय उसके कंधों उन लोगों में लाने के लिए होगा। ये मूसा की तरह महान होगा और उससे परमेश्वर के वचन को लाने के लिए शक्ति दी जाएगी। गौर करें कि सोचने का क्या महत्व होगा जब उन्हें एहसास हुआ भविष्यवाणी उनके लिए है। ये केवल इतिहास के अनुवाद नहीं रहे हैं, ये अंतिम दिनों के दूरदर्शी का भी अनुवाद रहा है। यीशु मसीह के चमत्कारी सुसमाचार का पुनरुत्थान जोसेफ में आप अपने आप से इस पूर्ण करने में मदद करेगा। आज लगभग 200 वर्ष बाद ये देखना आसान है कि कैसे ये भविष्यवाणी सिद्ध हुई है। हम जानते हैं उन महान चीजों के विषय में जो जोसेफ ने प्रभु को भविष्यवक्ता होकर पूरा किया, परंतु याद रखें कि जोसेफ ने इस भविष्यवाणी को का अनुवाद किया। उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को भी भविष्यवक्ताओं से बोली थी। यह अभी भी एक युवा पुरुष के 20 की उम्र में के ना कोई वार्ड था, ना शाखा, ना प्रचारक और ना मंदिर। शायद ही किसी ने भविष्यवक्ता जोसेफ का नाम सुना होगा, कुछ जो सुन है। अब देखिए इस महान कार्य को जो प्रभु ने अपने सेवक जोसेफ के हाथ द्वारा पूर्ण किया है, उसके विरोध के विरोधियों के बावजूद भविष्यवाणी का पूरा होना जोसेफ स्मिथ का भविष्यवक्ता की बुलाहट का सहमुख सबूत नहीं है। कोई भी जो जोसेफ स्मिथ के लिए अपनी गवाही को प्रश्नात्मक करें या उनके जीवन और सेवा की गलत भ्रमक या स्पष्ट जानकारी से संकोच कर रहे हैं, मैं उन्हें फलों की ओर गौर करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। वे अनेक आशीषें जो जोसेफ स्मिथ पुनरुत्थान की भविष्यवक्ता में चमत्कारी मिशन से हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि जोसेफ एक भविष्यवक्ता प्रकटकरण और भविष्यवक्ता बीते हुए की बात अब नहीं है। चमत्कारों के दिन दृश्य चंगाई और दूतों का मदद देना नहीं रुका है, क्योंकि जोसेफ एक भविष्यवक्ता थे। हम सबके पास पवित्र अपोहित्य की शक्ति और आशीष का प्रवेश मार्ग है, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की भेंट और प्रभु भोज समेत। क्योंकि जोसेफ एक भविष्यवक्ता थे, हमारे पास मंदिर की आशीषें और धार्मिक विद्या है जो हमें परमेश्वर से बांधे रखती हैं। हम उनके लोग बनाती हैं और धार्मिकता की शक्ति को प्रकट करती हैं। एक दिन संभव होकर परमेश्वर के मुख को देखना पिता के भी और सीधा, क्योंकि जोसेफ एक भविष्यवक्ता थे। हम जानते हैं कि विवाह और परिवार हमारी खुशी के लिए परमेश्वर की योजना का एक आवश्यक भाग है। हम जानते हैं कि मंदिर की धर्म विद्या और अनुबंधों द्वारा हम परिवार के संबंध अनंत तक दृढ़ होंगे, क्योंकि जोसेफ एक भविष्यवक्ता थे। हमारे पास एक से अधिक खिड़की हैं स्वर्ग में, अनंतता के द्वार हमारे लिए खुले हैं। हम केवल सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह जिन्हें उन्होंने भेजा है जान सकते हैं। अनंत जीवन हमारा हो सकता है, क्योंकि जोसेफ एक भविष्यवक्ता थे। हम में से अधिकांश ने साक्षी पर साक्षी दी है, गवाही पर गवाही। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और इस संसार का उद्धार करता है। हमारे पास यीशु के विशेष साक्षियों की अटूट कड़ी, हमारे आज के भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, पहली अध्यक्ष के सलाहकार, 12 परिषदों को प्रेरित के सदस्य इसमें शामिल हैं। उनकी साक्षियों में मैं अपनी नम्र किंतु निश्चय गवाही जोड़ता हूँ। यीशु मसीह जीवित हैं और अपने गिरजा का निर्देश करते हैं। परमेश्वर का पौरोहित्य और अधिकार एक बार फिर इस पृथ्वी पर है। हम बिना डर के प्रभु के इस अत्यधिक भविष्यवक्ता दूरदर्शी और प्रकटकर्ता को अपनी साक्षी और अपना आभार घोषित करते हैं। यही मेरी प्रार्थना है और यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमेन।
In 1977, I was serving as a full-time missionary.
1977 में मैं पूरे समय की प्रचारक सेवा काश्को पेरू में कर रहा था। मुझे और मेरे साथी को सभी प्रचारकों को काश्को क्षेत्र के शानदार माचू पिचू के खंडर ले जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई। खंडरों की हमारी यात्रा के अंत में कुछ प्रारक इनका मूल पुल पर जाना चाहते थे। पहाड़ की पगडंडी का भाग तुरंत ही मैंने अपने मन में कहा व ना जाने पवित्र आत्मा से विश्वसता को महसूस किया। पगडंडी के साथ मैं पहाड़ 2000 फीट की गहराई में था। कई क्षेत्र में यह पहले केवल एक व्यक्ति के बारे में निकलने कितनी चौड़ी थी। मेरी साथी और मैंने उससे कहा कि इनका पुल नहीं जाना चाहिए, किंतु प्रचारकों ने जोर दिया कि हम वहां जाएं। वाद विवाद और गहरा गया और इसके बावजूद जो अपनी पवित्र आत्मा ने मुझे निर्देश दिया, मैं साथियों के दबाव में मान गया और उनसे कहा कि हम पुल को देखने तब ही जाएंगे यदि हम बहुत बहुत सावधान हैं। हमें इनको पुल की पगडंडी की ओर प्रवेश किया जो इनका पुल की ओर ले जाती थी, जिसमें मैं झंडू के पीछे था। और जैसे कि पहले फैसला हुआ था कि शुरुआत में सब धीरे धीरे चल रहे थे, फिर प्रचारक जल्दी चलने लगे और भागने भी लगे। उन्होंने धीरे चलने की मेरी याचिकाओं को नकार दिया। मुझे लगा कि मुझे सब को पकड़कर वापस आने की के लिए कहा है। मैं उनसे काफी पीछे था और मुझे भाग कर उन्हें पकड़ना था। जैसे ही मैं एक मोड़ पर आया, एक सक्रिय मार्ग जिस पर दो चल सकते थे आया, मैंने एक प्रचारक को पत्थर के सहारे पीठ की ओर खड़ा देखा। मैंने पूछा कि वहां क्यों खड़ा है। उसने मुझसे कहा कि उसके क्षण में ऐसा प्रतीत हुआ था कि उसे उसी जगह में रहना चाहिए और मुझे आगे जाना चाहिए। मुझे महसूस हुआ कि मैं जल्दी से दूसरों तक पहुंचूं तो मुझसे आगे थे, तो उसने मुझे दूसरों की मदद करने के लिए आगे जाने दिया और मैं पगडंडी पर आगे बढ़ गया। मैंने ध्यान दिया कि मैदान हरियाली से भरा हुआ था। मैंने अपना दाहिना पैर जमीन पर रखा। वास्तविकता में हरियाली के नीचे कोई जमीन नहीं थी और मैं वहां से गिरा। मैंने हताश होकर एक पगडंडी से नीचे जाती हुई शाखाओं को पकड़ लिया। कुछ समय के लिए मैं नीचे देख सकता था, कुछ 2000 फीट अपने नीचे उर्बंबा नदी जो इनकास की सैक्रेड घटी को पार करती थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी अंदर की शक्ति ने मुझे छोड़ दिया और वह कुछ समय तक मामला था। इससे पहले कि मैं उसे और पकड़ ना सकता, उस क्षण में मैंने तीव्रता से प्रार्थना की। वह एक छोटी सी प्रार्थना थी। मैंने अपना मुंह खोला और कहा, पिता मेरी मदद करें। शाखाएं मेरे शरीर का बोझा लेने जितनी मजबूत नहीं थी। मैं जानता था कि मेरा अंत पास है। उसी क्षण जब मैं गिरने वाला था, मैंने एक मजबूत हाथ को अपने कंधे से ऊपर खींचने का स्पर्श किया। उस मदद के साथ मैं निरंतर लड़ सका और अपने आप को वापस पगडंडी पर पाया। वह प्रचारक पीछे रह गया, उसने मुझे बचाया। परंतु वास्तव में हमारे स्वर्गीय पिता ने मुझे बचाया था। उन्होंने मेरी आवाज को सुना था। मैंने पवित्र आत्मा की ध्वनि को 3 बार पहले सुना था। मुझे इनका पुल पर ना जाने के लिए बताते हुए, किंतु मैंने इस ध्वनि की आज्ञा को नहीं माना था। मैं सदमे में था, मैं पीला पड़ गया था और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोलूं। जब मुझे याद आया कि दूसरे प्रचारक हमसे आगे हैं और हम उन्हें ढूंढने के लिए निकल गए, उन्हें खोज कर बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था।
But that I did not pay any attention to his.
माचू पीछू वापस आ गए सावधानी से और शांति से। वापसी की यात्रा में मैं चुप रहा और मेरे मन में विचार आया कि उन्होंने मेरी ध्वनि की ओर ध्यान दिया और मैंने उनकी ध्वनि की ओर ध्यान नहीं दिया। मेरे मन में एक गहरा दर्द उनकी आज्ञा को ना मानने का और उसी समय एक प्रति आभार उनकी दया का। देखो, उसने हम पर अपना न्याय लागू नहीं किया है, परंतु अपनी महान दया द्वारा उसने मेरे जीवन को बचाया। आलमा 26:20-20। दिन में अंत में जब मेरी निजी प्रार्थना करते का समय आया, मैंने मन से प्रार्थना की, पिता के अनुग्रह और परमेश्वर की शांति, कोरिन्थियंस 1:3 मेरे प्रार्थना की, सच्चे हृदय के साथ वास्तविक उद्देश्य से मसीह में विश्वास करते हुए, मोरोनी 10:4 में। उसी दिन की सुबह मैंने अपने होठों से प्रार्थना की थी और जब मैं मरने वाला हूँ, मैंने मन से उससे प्रार्थना की थी। मैंने उस स्तर तक अपने जीवन को खोजा था। मैंने पाया कि कई अवसरों पर हमारे स्वर्ग के पिता मेरी और कितने दयालु रहते हैं। उन्होंने मुझे उस दिन माचू पिचू में कई शिक्षाएं दी। एक सबसे बड़ी शिक्षा थी कि मैं हमेशा प्रार्थना करना चाहिए सच्चे हृदय के साथ वास्तविक उद्देश्य विश्वास करते हुए। ऐसे ही एक अवसर पर प्रभु यीशु मसीह किसी जगह प्रार्थना कर रहे थे और जब वह यह कर चुके, उनके एक चेले ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, लूका। फिर उन्होंने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और आज वह मुझे और आपको प्रार्थना करना सिखाते हैं। जब हम अब मनों में उन्हें गेतसमाने में प्रार्थना करते देखते और कहते सुनते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या वास्तव में सच में वही चाहिए, तो भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। पौलुस विवरण देता है कि कैसे यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। हमें देह के रहने के दिनों में, खासतौर से गेतसमाने में, जब उन्होंने ऊंचे शब्द में पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। इब्रानियों 5:7। जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या आप वास्तव में प्रार्थना कर रहे हैं, क्या या केवल प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अपनी प्रार्थनाओं के साथ ऊपरी हैं? यीशु ने तीव्रता से प्रार्थना की और अपने पिता से बात करी और ऐसी हुआ कि यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहे थे तो आकाश खुल गए। जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि स्वर्ग खुल गया? कब? आखिरी समय था जब आपको स्वर्ग से संबंधित होने का एहसास हुआ था। यीशु ने महत्वपूर्ण निर्णय के लिए पिता से प्रार्थना करके अपने आप को तैयार किया और उस दिन मैं वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में मैं सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनसे 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। क्या आप अपने आप को स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करके महत्वपूर्ण निर्णय के लिए तैयार करते हैं? क्या आप अपने आप को प्रार्थना के क्षण के लिए तैयार करते हैं? जब यीशु मसीह अमेरिकन महाद्वीप पर आए, उन्होंने लोगों को प्रार्थना करना सिखाया और यीशु ने उनसे कहा, प्रार्थना करते रहो। उन्होंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। यीशु आपको हमेशा प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यीशु जानते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता हमें सुनते हैं और हमारे लिए हमेशा अच्छा करते हैं। ऐसा क्यों है कि हम कभी कभी प्राप्त नहीं करना चाहिए? क्यों? उसी क्षण हम कहते हैं, स्वर्ग पिता, वह हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे प्रति संवेदनशील और हमारी आवश्यकताओं के, और हाँ, जब उनकी आंखें और कान आपस जुड़े हुए हैं, वह हमारे दिमाग को पढ़ सकते हैं और वह हमारे मन को महसूस कर सकते हैं। आप उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। अब अच्छी बात यह है कि आप आपको प्रेम और दया की आंखों से देखेंगे। प्रेम और दया जो हम पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, परंतु प्रेम और दया उनके साथ ही है उस क्षण से जब आप कहते हैं, स्वर्ग पिता।
So,
तो प्रार्थना का एक क्षण भी बहुत बहुत पवित्र क्षण होता है। वह वो व्यक्ति नहीं है जो कहे, नहीं मैं तुम्हें नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम मेरे पास केवल मुश्किल से आते हो। केवल पुरुष ऐसा करते हैं। वह वो व्यक्ति नहीं है जो कहे, ओह तुम नहीं जानते कि मैं कितना व्यवस्थित हूँ। इस कारण ऐसी मेरी आशा और मेरी प्रार्थना है कि हम सब वैसे प्रार्थना करें जैसे कि यीशु ने हमें सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Dear sisters and brothers, what a blessing
it is. भाइयों और बहनों, यहाँ एकत्रित होना, प्रभु के सेवकों द्वारा हमको सिखाया जाना, यह कितनी अच्छी आशीष है। यह कितना अद्भुत नहीं है, कितनी तरह से हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता हमें मार्गदर्शन और आशीष देते हैं। वह सच में चाहता है कि हम घर वापस भी जाएं। एक कोमल करुणा की श्रृंखला के द्वारा मेडिकल स्कूल के निकला एक युवक डॉक्टर, मैंने पीडियाट्रिक रेजिडेंसी ट्रेनिंग में उच्च श्रेणी प्रतियोगिता को स्वीकार था। जब मैं दूसरे सहपाठियों से मिला, मैं अपने आप को कम महसूस किया। इन सब के लिए मैं तैयार नहीं था। मैंने सोचा कि यहाँ कोई तरीका नहीं है कि मैं बाकी समूह के स्तर तक पहुंच सकूं। शुरू में तीसरा महीना मैं अस्पताल के नर्सिंग होम स्टेशन पर बैठा था, विकल्पता से अपने आप में उदास था और सो गया। जैसे ही मैंने एक छोटे बच्चे को निमोनिया के साथ दाखिला लिया कर रहा था, मैंने अपने आप को जीवन में कभी इतना मायूस नहीं पाया था। मुझे कोई तरीका नहीं पता था कि 10 साल के लड़के के समोनिया का इलाज कैसे करते हैं। मैं चकित होना शुरू हुआ था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुरंत उसी क्षण एक सीनियर डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे पूछा, यह कैसा कर रहा है। मैंने अपने निराशा और डर सामने निकाल दिए। उनके जवाब से मेरी जिंदगी बदल गई थी। उसने मुझसे कहा और बाकी सीनियर डॉक्टर उनके लिए गर्व महसूस करते थे, और यह कैसे मैं एक बेहतरीन डॉक्टर बनूंगा। संक्षेप में, वे मुझे उस समय पर भरोसा कर रहे थे जब मैंने खुद पर भरोसा नहीं किया था। मैं खुद के अनुभव के सामना अक्सर अपने सदस्यों को सुनाते हैं। क्या मैं एक इंसान के रूप में अच्छा कर रहा हूं? क्या मैं सच में सेलेस्टियल राज्य तक पहुंच पाऊंगा? सच में अच्छे बनने रहने में कोई बात नहीं है। हम में से कोई भी नहीं हमारी मुक्ति को खरीद ले या ले सकता है, लेकिन चकित होना यह सभी खो सकता है यदि प्रभु के सामने स्वीकार कर लेते कि जैसे कि हम इनको प्रश्नों को समझ पाया हूं। कभी कभी हम गिरजा जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। यहां तक हमारे स्वयं के ईमानदार सुधारने का आमंत्रण भी हमें शांति से सोचना चाहिए कि मैं यह सब नहीं कर सकता हूं या कभी नहीं इन अच्छे लोगों के समान नहीं बन सकता हूं। जैसे यह है, शायद हम भी महसूस करते जैसा हम उस रात अस्पताल में किया था। कृपया मेरे भाई और बहनों, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करना चाहिए। हमें बुनियाद बेबुनियाद की तुलना और प्रतियोगी बनने के द्वारा अपने आप को यातना देते हैं। हम अपने स्वयं कीमती कम कामों को ना करने या करने के द्वारा दूसरों के मुताबिक करने के द्वारा गलत से करते आ सकते हैं। यदि हम तुलना करते हैं कि चलो करें, हम भूतकाल में कैसे करते थे, आज में किस तरीके से भविष्य में काम करना चाहिए। मैं आपसे सीधा और साफ कहता हूं, क्या आप अच्छा करने का प्राप्त हैं? क्या मैं अच्छा कर सकता हूं? प्रश्न का जवाब है हाँ, आप अच्छा कर सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं, तब आपके पश्चाताप और सिद्ध और विद्रोह नहीं करेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर हिदायत रहित रेफरी नहीं है। हमें खेल से बाहर निकालने के लिए कोई बहाना नहीं देखता। वह हमारा संपूर्ण प्रिय पिता है जो अपने सारे बच्चों को वापस घर लाने और सदा सर्वदा उसके साथ परिवारों के रूप में रहने की किसी भी और बातों से उदास रहता है। उसने सच में एकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कृपया विश्वास करें इस अनंत सच्चाई से, आशा और धैर्य रखें। हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए ऐसा करने का इरादा रखता है। यही उसका काम है और उसकी महिमा है। और मुझे अक्सर गॉर्डन बी हिंकली की इस नियम को सीखने का तरीका प्रिय लगता है। मैं उन्हें बहुत अवसर पर कहते सुना है, भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे सिर्फ कोशिश करवाना चाहता है, लेकिन आपको वास्तव में कोशिश करनी चाहिए। वास्तव में कोशिश करने का मतलब जितना अच्छा कर सकते हैं करना, जान करके हम कहां हम सुधार करने की जरूरत है, तब भी फिर से कोशिश करना चाहिए। इसे बार बार करते रहने से प्रभु के समीप और समीप जाते हैं, हम उसकी आत्मा को अधिक और अधिक महसूस करते हैं और हम उसकी महिमा को अधिक पाएंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं हम पहचान नहीं पाते कैसे कई बार प्रभु हमारी सहायता करना चाहता है। मुझे एल्डर डेविड एबेडनार ने कई शब्दों को अच्छा लगता है, हम बहुत स्पष्टता से समझ सकते हैं कि प्रायश्चित पापियों के लिए है। मैं इतनी स्पष्ट नहीं हूं, इसलिए हम जानते हैं और समझते हैं प्रचार संतों के लिए भी है। प्रायश्चित हमारी उभरने ऊपर उभरने और बुराई से बचने और अच्छा करने की मदद करता है। यह प्रभु का अनुग्रह के द्वारा हर किसी समर्थ में मिलेगी। अच्छा करने की मदद करने के काबिल नहीं हो सका, इस अनुग्रह सामर्थ की शक्ति सक्रिय होती है। यह सेलेस्टियल राज्य के योग होने को हमें स्वर्गीय सहायता की अत्यधिक जरूरत होती है और हम अपने बस स्वर्गीय सहायता प्राप्त करने के लिए कब्जा करना है, उससे मांगना है और नेक प्रोत्साहन प्राप्ति का हमें कार्य करना है। अच्छी खबर यह है कि यदि हम ईमानदारी से पश्चाताप करेंगे, हमारे पहले के पाप हमें उत्कर्ष होने से दूर नहीं कर सकते। मोरिनी ने हमें उस दिन के उल्लंघन के बारे में बताया था कि वह सच्चे हृदय से जितनी बार पश्चाताप करके क्षमा चाहते हैं उतनी बार उन्हें शाप कर दिया जाता है। और पापी स्वयं पापियों से कहता है, अगर वह अपने पापों को तुम्हारे और मेरे सामने स्वीकार करता है और अपने सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, तब तुम उसे क्षमा कर दो और मैं उसे भी क्षमा कर दूंगा। हाँ, और जितनी बार वो बोलेंगे करेंगे, मैं उतनी बार उनको विरोधों के भंग करने के लिए क्षमा कर दूंगा। यदि हम ईमानदारी से पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर हमें सच्चे क्षमा करेंगे, यहां तक कि जब हम अपनी गुनाह बार बार दोहराते हैं, जैसे एल्डर जेफरी हॉलैंड ने कहा था। तथापि हम सोचते हैं कि बहुत से मौके गंवा दिए हैं, तथापि हम आप महसूस करते हैं कि हमने बहुत सी गलतियां की। मैं गवाही देता हूं कि पवित्र प्रेम के द्वारा आप बहुत दूर नहीं है, यह संभव नहीं है आप निराश में डूब जाएं मसीह के प्रायश्चित के खत्म होने वाले चमकती रोशनी से। इसका किसी भी तरह से यह मतलब नहीं है कि पाप करना सही है, पाप हमेशा के लिए परिणाम रहे हैं। गुनाह हमेशा हानि और चोट पहुंचाता है दोनों को, पापियों और उनके जो उनके पाप से प्रभावित होते हैं। और सच्चा पश्चाताप करना कभी भी उतना आसान नहीं है। अतिरिक्त कृपया समझ सकें कि यह तक कि परमेश्वर अब हमारे दोषी होने और पापों के दाग को दूर कर सकता है। जब हम ईमानदारी से पश्चाताप करते, वह शायद हमारे सारे पापों को परिणाम तुरंत न करे। कभी कभी हम हमारे पूरे जीवन और साथ लगे रहते हैं और पाप करने का सबसे खराब तरीका है यह सोच समझ कर किया जाने वाला पाप, जहां एक कहता है मैं अभी पाप कर सकता हूं और मैं बाद में पश्चाताप करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि यह मसीह मसीह के बलिदान और पीड़ा को गंभीरता से मजाक उड़ाना है। प्रभु की स्वयं घोषणा की थी, मुझे प्रभु के लिए पाप को किसी भी श्रेणी तक कम आंका नहीं जा सकता। और आलमा ने घोषणा की, देखो मैं तुमसे कहता हूं पाप कभी भी आनंददायी नहीं हुआ है। एक कारण है कि आलमा बार बार पाप करने को विशेष सच्चा बयान देता है। हम आत्मा से एक दूसरे को दूर रखते हैं, निराश हो जाते हैं, पश्चाताप करना बंद कर, लेकिन मैं दोहराता हूं उद्धारकर्ता के प्रायश्चित के कारण हम पश्चाताप कर सकते हैं, पूरी तरह से क्षमा पाते हैं, जितना शीघ्र हमारी पश्चाताप ईमानदारी से किया होगा। हम क्या नहीं कर सकते, सिद्ध करने की बजाय पश्चाताप। हम यह हमारे अपने पापों के काम को इन्याय करना नहीं करेगा। परमेश्वर जानता है कि मेरे लिए यह कठिन है, तो मैं वैसे ही हूं जैसा मैं ग्रहण करूंगा। सच में कोशिश करता हूं का अर्थ उस तरीके से करते रहे जैसे परमेश्वर के स्तर तक पूरी तरह ना पहुंच जाए, जिसे साफ तौर से प्रश्नों के प्रभाषित किया गया है, हमें मंदिर स्तुति के तप करने कहते हैं। दूसरी बात, निश्चित रूप से हमें स्वर्ग से बाहर और मदद से अलग रखा जाएगा, हमें विद्रोह करने की जरूरत है। मूसा की पुस्तक हमें सिखाते हैं शैतान के विद्रोह करने का स्वर्ग से निकाल दिया गया था। हम कभी भी विद्रोही हो जाते हैं, हम मन में कहते हैं मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, मुझे पश्चाताप नहीं करना। एक इंटेंसिव केयर प्रेडिक्टेशन के रूप में मैं जानता हूं यदि एक जीवन उपचार को हम परमेश्वर के विरोध विद्रोह करते हैं, हमारी आशा, हमारी एक मदद आशा जो यीशु मसीह को नकारते हैं, जो आत्मिक प्रभु की ओर ले जाता है। हम में से कोई भी अपनी क्षमता से अधिक नहीं कर सकता। हम में से कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि यीशु मसीह की दया और योग्यता द्वारा बचाया जाए, लेकिन परमेश्वर हमारी आजादी का आदर करता है। हम भी बिना परिश्रम के बचाए जा सकते हैं, इसलिए महिमा और कार्य काम के बीच में संतुलन अंतर है। हमें मसीह की एक आशा है, क्योंकि वह हमारे सहायता करना और बचाना चाहता है। वास्तविकता में वह हमारी मदद कर रहा है। जरा रुकें और सोचें, पहचाने मदद करते हैं जीवन में। मैं आपको गवाही देता हूं, यदि हम कोशिश करें, सिद्ध या विद्रोह नहीं करेंगे, अक्सर पश्चाताप करते रहेंगे और महिमा यीशु मसीह की मदद के लिए आग्रह करते रहें, आप संभवतः सकारात्मक रहें, अच्छे रहेंगे। इसी तरह से प्रभु के सम्मुख स्वीकार करें, आप सेलेस्टियल राज्य में यीशु मसीह में संपूर्णता के साथ करते रहेंगे। आपको आशीषें और महिमा और आनंद प्राप्त होगी, जिसकी मैं परमेश्वर के अमूल्य बच्चों की कामना करता हूं, विशेषकर मैं और आप शामिल हैं। मैं गवाही देता हूं, परमेश्वर जीवित है, हमें घर वापस जाना चाहिए। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, आमीन।
We express gratitude to the
Mormon temple. मनोहर संगीत के लिए हम मॉर्मन गायक मंडी के लिए आज प्रस्तुत किया, उसका आभार प्रकट करते हैं। इस सत्र के हमारे अंतिम वक्ता एल्डर नील एन एंडरसन बारक की परिषद के परिचित होंगे। उनके पश्चात गायक मंडली इस सभा का समापन इफ द वे बी फुल ऑफ ट्रायल गाकर वेरी नॉट गाकर करेगी। समापन प्रार्थना उसके पश्चात सत्तर के एल्डर मार्कस बी नैश द्वारा दी जाएगी।
Much of the important work of God is unseen in the eyes of the world. The sixth century before Christ brought illustrious thinkers such as Confucius in China.
परमेश्वर के बहुत से महत्वपूर्ण काम संसार की आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। छह शताब्दी पूर्व मसीह से पहले महान सोचने वाले जैसे कि चाइना में कन्फ्यूशियस और ईस्टर्न इंडिया में बुद्धा को लाया था, परंतु परमेश्वर पौरोहित्य की सामर्थ्य दानियल के ऊपर थी। भविष्यवक्ता जो बेबीलोनियन के राजा नेबूकदनेस्सर के राज्य के दौरान बंधाई में रहता था, रात में सपने से परेशान राजा नेबूकदनेस्सर ने मांग की कि उसके तंत्री और कसदी उसे दोनों स्वप्न और अनुवाद को बताएं जो उसने देखा था। वास्तव में वो बता नहीं सकते थे कि राजा ने स्वप्न में क्या देखा था, और वे विरोध करने लगे थे। पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, न कोई ऐसा राजा जो ऐसी बात पूछता हो। राजा नेबूकदनेस्सर अति क्रुद्ध हुआ, उनकी असफलता और क्रोध में घोषणा कि सारे उसके सलाहकार को मार दिया जाए। दानियल राजा एक बुद्धिमान पुरुष था, उसने परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना की जिससे उस पर यह रहस्य जाहिर किया जाए। एक चमत्कार हुआ, दानियल को राजा के स्वप्न का भेद प्रकट हुआ था। दानियल को राजा के सम्मुख लाया गया, क्या तुम में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न में मैंने देखा उसे तुम फल समेत मुझे बताओ? दानियल ने उत्तर दिया, वह न तो पंडित, न तो तंत्री, न तो ज्योतिषी, न भावी, न ही भाग्य बताने वाला था जो राजा को बता सके, परंतु भेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने उसको जताया कि अंत में दिनों में क्या होने वाला है। स्वर्ग का परमेश्वर दानियल कहता है, ऐसा राज उदय करेगा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया, कभी न नष्ट होगा परंतु सदैव खड़ा रहेगा। स्वप्न दानियल कहता है सच है और निर्वचन सत्य है, और उसके स्वप्न का अर्थ प्रकट किया। राजा ने साहस से बोला, तुम लोगों का परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा है। परमेश्वर के चमत्कारी तरह से दानियल का बीच बचाव करना, यीशु मसीह के भविष्य का सुसमाचार की भविष्यवाणी करके पृथ्वी पर पुनर्स्थापित करना, एक राज जो कि संसार भर में जाना जाएगा, कभी न नष्ट होगा परंतु सदैव खड़ा रहेगा। अंतिम दिनों में गिरजे के सदस्य संख्या में लगभग कम जरूर हैं, जैसे नेफी ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन वे सारी पृथ्वी पर होंगे, और सामर्थ्य और पौरोहित्य की धर्म विधियां सभी के लिए उपलब्ध होंगे जो उसकी कामना करते हैं, पृथ्वी पर भर जाएंगे, और दानियल ने भविष्यवाणी की थी वो सच होगी। 1831 में भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने यह प्रकटीकरण प्राप्त किया, परमेश्वर के राज्य की कुंजियां और इज़राइल का पृथ्वी के चारों तरफ से इकट्ठा होना, पृथ्वी पर मनुष्य से वाचा बांधी थी, और तब से सुसमाचार का पृथ्वी के अंत तक आगे आना, वैसा पत्थर जो बिना हाथ से खोदे पहाड़ से कटकर सारी पृथ्वी में फैल जाएगा। इसराइल का एकत्र होना एक चमत्कार है, और ये विशाल पहेली है जिसके टुकड़े भव्य द्वितीय आगमन की घटना से पूर्व लाए जाएंगे। वैसे ही जैसे हम पहाड़ के उलझे टुकड़ों के साथ परेशान हो सकते हैं, पूर्व संतों ने पुनर्स्थापित सुसमाचार के आचरण का सारे संसार में ले जाते देखा, जो कि लगभग असंभव काम था, परंतु वे शुरू हुए। एक व्यक्ति, एक पहेली, एक समय पर सीधे छोर को खोजते हुए इस पवित्र कार्य को सही से करते हुए, छोटे से छोटा पत्थर जो बिना हाथों से कटे हुए घूमना शुरू किया, सौ से हजारों में, दस से हजार, और अब लाखों अनुबंधित अंतिम दिनों के संत प्रत्येक राष्ट्र से पहेली के टुकड़ों से जुड़ते हुए चमत्कार और अद्भुत कार्य में जुड़ रहे हैं।
Each of us is a piece of the puzzle.
हम में से प्रत्येक पहेली के टुकड़े हैं और हम में से प्रत्येक को अन्य महत्वपूर्ण टुकड़ों को स्थान पर लगाने में मदद करनी है। आपके इस महान कारण में सहायता की जरूरत है। हमारे आगे की दृष्टि साफ है। हम उस चमत्कार को लगातार होते देख सकते हैं और प्रभु का हाथ हमें मार्गदर्शन देता है, जैसे हम बचे हुए रिक्त स्थान को पूरा करते हैं। फिर महान यहोवा कहेगा, काम पूरा हुआ, और अपने प्रताप और महिमा में वापस लौटेगा। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने कहा, अभी समय है सदस्यों और प्रचारकों के एक साथ आने का, एक साथ काम करने के लिए, आत्माओं को उसके पास लाने के लिए। वो हमारे काम में सहायता करेगा यदि हम विश्वास से उसका काम पूरा करेंगे। पवित्र नियुक्ति की जिम्मेदारी एक समय में मुख्यतः पूरे समय के प्रचारकों के कंधों पर होती थी, अब हम सब पर है। हम सभी पुनर्स्थापित सुसमाचार को बांटना चाहते हैं और प्रसन्नता से हर सप्ताह हजारों बपतिस्मा लें। लेकिन यहाँ तक इस अद्भुत आशीष के साथ हमारी चिंता हमारे भाइयों और बहनों के लिए है और हमारी कामना परमेश्वर के अनुग्रह से दमदार जरूरत है परमेश्वर के राज्य की संसार भर में बांटने और बल देने की है। यहाँ तक दृढ़ इच्छा है सुसमाचार को बांटने की, आपकी खुशी कम न होगी अतीत के प्रयासों की आपकी सफलता से। आपको लगेगा जैसे एक दोस्त जो कहता है, मैंने अपने परिवार और दोस्तों से गिरजे के बारे में बात करी, परंतु कुछ ने ही जानने की कोशिश की और हर इनकार के साथ मैं और अधिक संकोची हो गया। मैं जानता था और मैं अधिक कर सकता था, लेकिन मैं फंस गया और अत्यंत दोषी महसूस करने लगा हूँ। चलो मैं देखता हूँ यदि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दोष एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जैसे ये हमें बदलाव करने के लिए जागरूक करता है, परंतु यहाँ पर सीमाएं हैं कि कितनी दूर दोष हमारी मदद करेगा। दोष एक गैसोलीन पावर्ड कार की एक बैटरी है, एक कार जो प्रकाश दे सकती है, इंजन शुरू कर सकती है और हेडलाइट्स को ऊंची कर सकती है, लेकिन ये आगे की लंबी यात्रा के लिए ईंधन उपलब्ध न कर सकेगी। बैटरी अपने आप में पर्याप्त नहीं है और न ही दोष। मैं सुझाव देता हूं कि आप किसी भी बात के अभाव में सोचते हैं, आप सुसमाचार बांट रहे हैं, मैं दोषी होने की भावना को महसूस करना बंद कर दें, बल्कि प्रार्थना करें जैसे अल्मा ने सिखाया था। मौकों के लिए हमें सदैव सही बातों में, चाहे जहां भी हो, तुम्हें परमेश्वर के साक्षी के रूप में खड़े होना चाहते हैं। परमेश्वर द्वारा तुम्हारा उद्धार हो सके और तुम्हारी गिनती प्रथम पुनर्जीवन पाने वालों में हो, जिससे कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त हो सके, ये कहीं अधिक मजबूत प्रेरणा के अपराध बोध से है। परमेश्वर की साक्षी के रूप में सभी समय और सभी जगह दोनों में अक्स डालता कि मैं हम जीते हैं और हम कैसे बोलते हैं। अपने मसीह में विश्वास में खुलकर जियो। जब कभी समय खुद ब खुद मौके दे, उसके जीवन और उसकी शिक्षा और उसकी सारे मानव जाति पर अतुल्य उपहार पर बोलो। मार्मन की पुस्तक से उसकी शक्तिशाली सच्चाई को बांटो। उसने हमें वादा दिया है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं उसे स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे आप अक्सर और ईमानदारी से मौके के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की साक्षी के रूप में खड़े होने का वे मौके आएंगे, और जो कोई और अधिक ज्योति और ज्ञान खोजे उसके सम्मुख दिया जाएगा। जैसे आप आत्मिक प्रोत्साहन पर उत्तर देते हैं, पवित्र आत्मा आपके शब्दों को अन्य के हृदय तक ले जाएगी और एक दिन उद्धारकर्ता अपने पिता के सम्मुख आपको पहचानेगा। आत्मिक कार्य किसी भी मदद पर परमेश्वर के राज्य में लाना एक समूह का प्रयास होता है। प्रचारकों की जितनी जल्दी हो सके सूची बनाएं और स्वर्गीय सहायता के लिए प्रार्थना करें। परंतु याद रखें, अन्यों का परिवर्तन का समय आप पर पूरी तरह से नहीं होता। कमला प्रसाद मॉरिशस आइलैंड से थी, बॉर्डॉक्स फ्रांस में मेडिकल स्कूल जाती थी। जब हम उनसे 1991 फरवरी में मिले थे, हमने एक परिवार के रूप में किसी को जो सच्चाई की खोज कर रहे हो को सुबह सुसमाचार बांटने के लिए प्रार्थना की और हमने उनके घर में शिक्षा दी थी। मेरा सौभाग्य था उनको बपतिस्मा देने का, लेकिन हम पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुए थे कि कमला गिरजा से जुड़ेंगी। मित्र प्रचारक और यहाँ तक परिवार के सदस्य परमेश्वर के साक्षी बने उन्हें देश में और एक दिन फ्रांस में। जब समय कमला के लिए सही था, उसने बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया था। अब 5 साल बाद उस निर्णय की आशीषें उसके चारों तरफ है और उसका बेटा मैडगास्कर में एक प्रचारक है। कृपया अपने प्रयासों को न देखें दूसरों के साथ उद्धारकर्ता का प्रेम बांटने के लिए, जैसे कि सफल असफल की परीक्षा आपके अंकों के साथ कि आपका मित्र संक्रात्मक से आपकी अनुभूति या फिर प्रचारकों से मिलने के नियंत्रण पर कैसे जवाब देता है। हमारे नश्वर आंखों से हम प्रयासों को प्रयास से तुलना नहीं कर सकते हैं, ना ही हम समय सूची बना सकते हैं। जब हम उद्धारकर्ता के प्रेम को दूसरों के साथ बांटते हैं, हमारे अंक हमेशा ए प्लस होते हैं। कुछ सरकारों ने प्रचार कार्य में प्रतिबंध लगा दिया। हमारे कुलीन सदस्यों के नेतृत्व दर्शाते हैं महान उत्साह परमेश्वर का साक्षी सभी समय और सभी स्थानों में होने का। नादेशता मॉस्को के अक्सर उपहार के डिब्बे में खूब सारी कैंडियों के साथ मॉर्मन की पुस्तक को रख कर देती थी। वह उन्हें बता देती, उसने कहा, यही सबसे मीठा उपहार है जिसे मैं संभवतः उन्हें दे सकती हूँ। यूक्रेन में बपतिस्मा लेने के थोड़े समय बाद स्वेतलाना को सुसमाचार उस व्यक्ति के साथ बांटने का। जब वो आदमी अपने बस स्टॉप पर उतरा, वो बोली, क्या आप परमेश्वर के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? आदमी ने कहा, हाँ। प्रचारकों ने विक्टर को सिखाया और उन्हें बपतिस्मा लिया। वो और स्वेतलाना बाद में फ्रेबर्ग जर्मनी टेंपल में मुहर बंद हुए। ध्यान रखें, आपकी आशीषें अप्रत्याशित तरह से आ सकती हैं। 7 सालों पहले कैथी और मैं डिएगो गोमेज और उसके सुंदर परिवार से सॉल्ट लेक सिटी में मिले। उन्होंने मंदिर ओपन हाउस में हमारे साथ भाग लिया था, परंतु गिरजे के बारे में अधिक जानने से शालीनता से हमारे निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। इस गुजारे मई में मुझे एक अचंभित कॉल डिएगो की ओर से मिला। उसने जीवन की घटनाएं उसे घुटनों के बल ले आई थी। उसने प्रचारकों का स्वयं ही ढूंढा था, अध्याय के लिए और बपतिस्मे के लिए खुद तैयार हुआ। जून 11 मैं बपतिस्मा के पानी में अपने मित्र और सहसाथी प्रेरित डिएगो गोमेज के साथ उतरा था। उनका परिवर्तित होना उनके समय सूची पर था और सहायता और बहुतों के सहारे से जो उन तक पहुंचे थे परमेश्वर के साक्षी के रूप में हुआ था। हमारे दुनिया भर के अद्भुत युवा और युवा वयस्कों से मैं विशेष निमंत्रण और चुनौती देता हूं, परमेश्वर के साक्षी बनो। आपके चारों ओर जो आत्मिक तहकीकात के लिए तैयार हैं, उलझन को स्मरण करो। आपको मेज पर खाली हाथों के साथ नहीं आना है, बल्कि तकनीकी और सामाजिक मीडिया के आपके आदेश होंगे। हमें आपकी जरूरत है, प्रभु को आपकी जरूरत है और यहाँ तक इस महान कार्य में और अधिक लगन से लगना है। उद्धारकर्ता कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये भाग्य से नहीं है कि आप अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ सेंट्रल और साउथ अमेरिका या पैसिफिक में रहते हैं या परमेश्वर के संसार में कहीं अन्य स्थान में हो। क्योंकि सुसमाचार अवश्य ही हर एक राष्ट्र जाति भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों और लोगों में की जाएगी। स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गए, कभी न नष्ट होगा परंतु सदैव खड़ा रहेगा। स्वप्न सच्चा है और निर्वचन सत्य है। मैं सिद्धांत और अनुबंधों के शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। प्रभु को पुकारूंगा कि पृथ्वी पर उसका राज्य आगे जाए और निवासियों को इससे प्राप्त हो सकता है और आने वाले दिनों के लिए तैयार रहें, जिसमें मनुष्य का पुत्र स्वर्ग के नीचे अपनी महिमा के तेजस्वी पहनावे में पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य में मिलने आएगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Trial me.
Our Father in heaven.
हमारे स्वर्गीय पिता, हम बहुत अत्यधिक धन्यवाद देते हैं आपके इस आशीष के लिए जो हमने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इस चरण सम्मेलन में हम यहाँ पे शामिल हुए हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं उस सिद्धांत के लिए जो हमें सिखाया गया है, जो नियम हमें सिखाए गए हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट है और हमारे आत्मा के लिए बहुत तृप्त करते हैं और हमारे आत्मा को भोजन देते हैं। हम आपका आभार प्रकट करते हैं ये मौका हमें देने के लिए। तो ये जो हमें सभा दी गई है उसका हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीषित करेंगे ताकि हम उस निमंत्रण को स्वीकार कर सके जो हमें जीवन में लागू करने हैं अपने जीवन में, ताकि पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करे और हमारा प्रेरणा दे ताकि हम आशीष पाए और सुसमाचार इस खतरनाक समय में बचाया जा सके। हम इसका आभार प्रकट करते हैं। हम आप पे आशा रखते हैं और आपके पुत्र पर यीशु मसीह के नाम में हम सब करते हैं, आमीन।
This has been a broadcast of the 186th semi-annual general.
ये अंतिम दिनों के संतों की यीशु मसीह की गिरजे का अर्धवार्षिक महासम्मेलन था। इसके वक्त गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए थे। इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा उपलब्ध कराया गया था। इसका प्रसारण बॉनेविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन यानी उपयोग वर्जित है।